We're going to go into my favorite subject.
अब मैं अपने दिलचस्प जो मेरी दिलचस्पी का मज़मून है उसमें दाखिल हो रहा हूँ.
That's Christ.
ये खुदा यीशु मसीह है.
Yes.
Hallelujah.
I used to read that verse in Colossians that says, "Christ in you, the hope of glory."
मैं कुलचियों के खत में अक्सर इस बात को पढ़कर बड़ा खुश होता हूँ कि मसीह का जहूर जो तुम में है इस खुदा का जलाल है.
But I could never quite understand it.
तो मैं इसको समझ नहीं सकता था.
It didn't have a lot of meaning to me.
इसके लिए मेरे सामने इसकी कोई खास इतनी उम्मीद नहीं थी.
And then in Hebrews 11, where it says Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
और इब्रानियों 11 बाब में जहां हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है.
I used that one time on my own father, my
own dad. तो मैंने इस आयत को अपने माँ और बाप पर एक दफा अप्लाई किया. मैंने उनके सामने इस बात को रखा.
At that time, my father was in a church that didn't believe in divine healing.
तो मेरा बाप उस वक्त एक कलीसिया का एक चर्च का मेंबर था जो कि रूहानी शफा पर इलाही शफा पर यकीन नहीं रखते.
And I talked about Jesus can heal my mother who was sick at that time.
तो मैंने उनको ये बताया कि मेरा यीशु मेरी बीमार माँ को सेह दे सकता है.
And my dad says, well, son, in this day, you know, he's given us doctors.
उसने मुझे ये तमसील दी और मुझे तसल्ली देनी चाहिए कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि इन दिनों में खुदा ने हमें डॉक्टर दे दिए हैं.
And I says, no, Jesus Christ is the same yesterday.
तो मैंने ये आयत उनके सामने पढ़ी कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है.
Okay, and then he said to me.
फिर उसने मुझे जवाब दिया.
Then he should be here.
तो फिर उसने कहा उसे यहाँ होना चाहिए.
He should be walking in robes.
वो उसको इस कमरे के अंदर चलना चाहिए.
And he's not here that way.
ये उस तरीके से तो वो यहाँ नहीं है.
So he's not the same.
तो वो वैसा ही नहीं है.
Well, at that time, I didn't know what to say.
तो मैंने उस वक्त ये नहीं जानता कि ये क्या बात है.
I knew he was the same as a healer.
मैं ये जानता था कि वो यक्षा है एक क्या कहना चाहिए शफा देने के लिए.
But where was he the same and not the same?
और वो कहाँ यक्षा नहीं है और है.
So I knew I didn't fully understand that.
मैं ये जानता था कि मैं इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं रहा.
So it's the study of Christ that gives us understanding.
ये खुदावंद यीशु मसीह की कलाम की गहराई में जाने और उसको समझने से हमें बात मिलती है.
Yeah, we won't finish this today. We'll finish it tomorrow.
आज तो हम इसको पूरा हल खत्म नहीं कर सकेंगे. कल हम इसको मुकम्मल कर लेंगे.
And Brother Branham said everything natural and spiritual run hand in hand.
तो भाई ब्रैनम ये हमें ये बताया कि कुदरती तौर पर और रूहानी तौर पर दोनों पहलू जो हैं ये यकसां साथ साथ चलते हैं.
We know the ingredients for the natural birth is water, blood, spirit.
आप जानते हैं कि जिस्मानी पैदाइश का जो तरीकाकार है या जो निशानात हैं वो खून पानी और जान है.
And the ingredients for the spiritual birth
और इसी तरह रूहानी बदन के भी जो हैं वो निशानात हैं.
So knowing that the two natural and spiritual run together.
ये जानते हुए कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं.
When they took this picture from the Hubble telescope.
जब उन्होंने ये उस दूरबीन से जो खला में पड़ी है जिसे हबल दूरबीन कहते हैं ली.
And they were looking at this one.
और वो इस पर देख रहे थे.
And this one.
और इस तस्वीर को भी देख रहे थे.
And after they had studied those,
और जब उन्होंने इन बातों की तहकीक की,
they said, "Now we know how stars are born."
तो फिर उन्होंने इस बात को कहा कि अब हम जानते हैं कि ये सितारे जो हैं किस तरह वजूद में आए.
Now spiritually, stars are the seed of Abraham.
आप जानिए कि रूहानी तौर पर खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को सितारे कहा है.
And so if natural science knows how natural stars are born.
और अगर हम कुदरती तौर पर ये जाने कि ये सितारे किस तरह से वजूद में आए हैं,
then it's time for us to understand the seed of Abraham.
तो फिर ये वक्त है हमारे लिए कि आप ये जाने कि इब्राहिम की नस्ल कौन सी है.
Amen.
Amen.
I just wish I had everything in your language.
मैं चाहता था कि काश हर चीज मेरे पास आपकी ज़बान में होती.
But we'll talk about everything.
लेकिन ऐसा ना होने के बावजूद भी हम हर बात पर गौर करेंगे.
Genesis 1:1.
पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत.
In the beginning, God created heaven and earth.
इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया.
The word God
لفظ خدا
in Hebrew is Elohim, El or Ella.
ہبریو میں اس کا عبرانی میں اس کا الوہیم ال اور الا کہا جاتا ہے.
And it means strength.
اور اس کا مطلب ہے قوت طاقت.
And Allah is to swear or bind oneself with an oath implying faithfulness.
اور اللہ کا مطلب ہے کہ قسم کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے متفق ہونا یا رہنا.
And so that's our Elohim.
یہ Elohim ہے.
Now in Genesis 2:4
اور پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب اور چوتھی آیت میں
is the word Lord.
تو وہاں یہ لفظ جو ہے لارڈ جس کا مطلب یہ خدا ہے یہ لکھا گیا ہے.
And it means Jehovah or Yahweh.
اس کا مطلب ہے یہوہ اور یاوے.
And the primary meaning is the self-existing one.
تو اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہے کہ وہ جو کہ وجود میں ہے.
But Hava of Jehovah,
یہ جو لفظ ہوا ہے جس سے ہم پہلے یہوہ کہتے ہیں,
means to become.
اس کا مطلب ہے وجود میں آنا.
That is to become known.
یہ جانے جانا.
Thus pointing to a continuous self-revelation.
جو ہمیں ایک اس کے اپنے مکاشفے کی طرف مائل رکھتا ہے لگاتار.
So we can call this sermon the becoming God.
تو ہم اس مضمون کو خدا بننے کے ساتھ اس کا عنوان رکھ سکتے ہیں.
Because God is still becoming.
کیونکہ خدا ابھی آگے بڑھ رہا ہے وجود میں ہے.
Becoming what?
وہ کیا بن رہا ہے؟
Becoming all that was in his mind.
وہ سب کچھ جو اس کے ذہن میں تھا.
Putting these two together,
اگر ہم دونوں کو اکٹھا کر دیں,
he is the self-existent one who reveals himself.
تو وہ شخصیت ہے وجود میں جو اپنے آپ کو ظہور میں لاتی ہے.
And so the prophet preached the sermon, Christ is the mystery of God revealed.
آمین. تو نبی نے اس بات پر پیغام دیا ہے کہ مسیح جو خدا کا ظہور تھا.
So that's what we have to keep in mind.
اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے.
But if we have a head full of a trinity of gods,
اگر ہمارے ذہنوں کے اندر تثلیث کا جو ہے وہ غلبہ پڑا ہوا ہے,
and then somebody says Christ,
تو اس کو وہ مسیح بھی کہتا ہے.
Then you think of Jesus of Nazareth.
تو جب کوئی مسیح کہتا ہے تو ہماری سوچ ہمیشہ یسوع جو ناصرت کا تھا اس کی طرف جاتی ہے.
But that's only one form of Christ.
تو یہ تو صرف ایک قسم ہے مسیح کی, مسا ہوئے کی.
And this is where we have to get our thinking straight with the Bible.
اور اس کو ہم اپنی سوچ کو بائبل کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے. اکثر جب مسیح لوگ کہتے ہیں تو سیکھتے ہیں یسوع مسیح, ٹھیک ہے, مسیح دا مطلب یسوع مسیح نہیں ہے. ساڈے سامنے صرف جدوں اسی کہنے ہاں تے اسی اس یسوع ال جڑا ناصرت والے او دی پہنچ جاندی گل, حالانکہ کئی جگہ تے کسی ہور گل واسطے مسا استعمال ہوندا. یس,
سو دس سیز یہوہ بیکمنگ,
یہاں لکھا ہے خدا وجود میں آ رہا ہے.
بیفور دی بگننگ,
ابتدا سے پہلے,
دیر واز جسٹ دی انویزیبل اسپرٹ.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نادیدنی روح تھی.
نو ایئر,
کوئی ہوا نہیں تھی.
نو لائٹ, نو ڈارک,
نہ تاریکی تھی نہ روشنی تھی.
نار مالکیو,
اور نہ ہی یہ کوئی ملکی کیوس جو ہے ان کو کہتے ہیں, ذرات تھے, نہ کوئی آدمی تھا.
نو ونڈ,
نہ ہوا تھی.
ناٹ ایون ایئر,
اور نہ یہ جو آپ کو اب ہوا نظر آتی ہے یہ بھی نہیں تھی.
جسٹ دی ایٹرنل اسپرٹ,
کیونکہ یہ ایک صرف خالص اور ہمیشہ قائم رہنے والی روح تھی.
دیٹس آور گاڈ,
وہ ہمارا خدا ہے.
دیٹس آور فادر,
اور وہ ہمارا باپ ہے.
ہی واز آل الون,
وہ بالکل تنہا تھا.
Only God is eternal.
کیونکہ خدا ہی ہمیشہ قائم رہنے والی شخصیت ہے.
We are not at some point in life given the ability to live forever.
کیونکہ ہمیں زندگی میں کسی بھی جگہ پر یہ تسلی نہیں دی گئی کہ ہم ہمیشہ تک زندہ رہیں گے.
That is not eternal.
یہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں ہے.
You mean if I'll never die, that's still not eternal?
آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں کبھی نہ مروں تو پھر بھی یہ جو بات ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے.
No, because eternal has no beginning and no end.
جو ابتدا ہے اس کا کوئی شروع نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاتمہ ہے.
So if we have eternal life,
ہمارے اندر ایک ہمیشہ کی زندگی ہے,
we have to have God's own life.
ہمیں ہمارے اندر خدا کی اس کی زندگی ہونی چاہیے.
Only God is eternal.
کیونکہ صرف خدا جو ہے وہ ابتدا سے انتہا تک ہے.
Book of Colossians,
کلسیوں کے خط میں
chapter 1,
اس کا پہلا باب, कुर्सियों पहला बाब वर्स
12
उसकी बारहवीं आयत
Giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light.
और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाएं.
Who has delivered us from the power of darkness?
उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाया.
And has translated us into the kingdom of His dear Son.
छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया.
Now let's just talk about that a minute.
आइए आप जरा थोड़ी देर इसके बारे में बात करें.
Inheritance of the saints in light.
नूर में मुकद्दसों की मेराज.
Delivered from darkness.
जिसने हमें तारीकी से निकाला.
Translated into a kingdom.
और उसने हमें तब्दील किया ताकि हमें कुछ की बादशाही बन जाए.
Not will be, already are.
ये ऐसा नहीं कि ऐसा होगा बल्कि है.
So what is it to be in light?
रोशनी में क्या होता है?
I understand Brother Ronnie touched on part of this the other day, and so did I.
मैं समझता हूँ कि भाई लानी ने भी इसके बारे में मुनादी की कल और आज मैं भी इसको कुछ थोड़ा छेड़ूंगा.
In the Old Testament it says,
पुराने आदनामे में यूँ लिखा है,
Thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path.
तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है.
It also says in the Old Testament,
और पुराने आदनामे में ये भी लिखा हुआ है,
The entrance of thy word giveth light.
तेरे कलाम का हिस्सा जो है वो मुझे रोशनी देता है.
But it changes a little bit in the New Testament.
लेकिन नए आदनामे के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली वाक्य होती है.
Look at the Gospel of John.
यूहन्ना की अंजील को देखें.
Keep your place in Colossians. We're going to come back to it.
कुलसियों के अंदर अपना निशान रखें और यूहन्ना की अंजील को निकालें. यूहन्ना की अंजील
chapter 1
उसका पहला बाब
verse 4
और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे.
In him was life, and the life was the light of men.
उसके अंदर नूर था और वो नूर आदमियों का उसकी जिंदगी थी और वो नूर आदमियों की जिंदगी थी. जी विच ओके होल्ड ऑन चैप्टर 4 वर्स
गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4
ऑन
चैप्टर 1 वर्स 4
ओके गो अहेड ही हैज रेड
आई ऑलरेडी रेड इट इफ यू हैवंट रेड इट गो अहेड
आई शुड रीड
यस
ओके चैप्टर 1 वर्स 4 एक मिनट जी मिनू जल्दी जल्दी छाजो नहीं नहीं उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी मैंने पढ़ना चाहिए था कुछ जाए
वर्स 14
इसकी चौदहवीं आयत
एंड द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड dwelt among us
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा
सो व्हाट वाज द लाइफ दैट वाज ऑन डिस्प्ले
जिंदगी क्या थी जो जहूर में आई
It was the word.
ये कलाम था
To quote the prophet,
नबी को यहां मंजर आम पर लाते हुए
When God interprets his word by bringing it to pass,
जब खुदा अपने कलाम को पूरा करता है कि वो वजूद में आए
That's light when you see it.
वो रोशनी है जब आप उसको देखना शुरू करते हैं
The living word is light.
ये जो जिंदा कलाम है ये नूर है
Not the historical word,
ये हिस्ट्री की बातें नहीं हैं
and not the prophetic word,
और ना ही अंबियाना कलाम
the living word,
ये जो जिंदा कलाम है
that's light,
ये नूर है
In the beginning, God said, "Let there be light."
शुरू में हम देखते हैं कि पदाश में खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा.
We could have argued over that.
हम इस पर कुछ बात से तकरार कर सकते हैं.
What is light?
ये रोशनी क्या है?
Well, I'd have my opinion.
मेरा अपना कोई ख्याल हो सकता है.
Rashid has his opinion.
रशीद का कोई अपना ख्याल हो सकता
है. William has his opinion.
भाई विलियम अपनी राय दे सकते हैं.
And we have a right to our opinion.
और हमें ये राय देने का हक हासिल है.
Because the word was not interpreted.
क्योंकि कलाम अभी तक बयान नहीं किया गया था.
But when the sun appeared.
लेकिन जब सूरज जाहिर हुआ.
That was light.
वो रोशनी थी.
It was the manifested word.
तो ये वो खुदा का कलाम था जो जहूर में आया.
That's light.
ये रोशनी है.
So if we are children of the light,
अगर हम रोशनी के नूर के फर्जंद हैं,
then we are walking in present truth.
तो फिर हम इस सच्चाई के अंदर चल रहे हैं जिसका तल्लुक इस हाल के साथ है.
We're not walking in the historical word.
हम उस तवारीखी कलाम में नहीं जा रहे हैं.
Though we believe it.
और हम उस पे ना उस पे ईमान रखते
हैं. But that's not our light.
क्योंकि वो हमारा नूर नहीं है.
When Jesus came on earth.
जब यीशु ज़मीन पर आया,
he was the light of the world.
वो दुनिया का नूर था.
And he tried to present himself to the denominations.
उसने अपने आप को तंजीमों पर जाहिर करना चाहा.
And they said, "We are followers of Moses."
तो उन्होंने कहा कि हम तो मूसा के मानने वाले हैं.
But when Moses was the living word, they rejected him.
लेकिन जब मूसा एक जिंदा कलाम लेकर आया, तो उन्होंने उसको भी रद्द किया.
So it's easy to believe the historical word.
ये तवारीखी कलाम को मानना बड़ा आसान है.
But very difficult to believe the present.
लेकिन ये जिंदा कलाम को मानना बड़ा मुश्किल है.
And why is that?
और ये क्यों है?
Because God works through man.
क्योंकि खुदा हमेशा इंसान को ही इस्तेमाल करता है अपने आप को जाहिर करने के लिए.
And we stumble over the fact that God uses a man.
और हम इस बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि खुदा आदमी को क्यों इस्तेमाल करता है.
It's easy to believe in apostles years ago.
साल गुजर गए हैं और रसूलों के जमाने पे अभी भी हमें यकीन करना आसान नजर आता है.
But hard to believe in apostles today.
लेकिन आजकल के जो शागिर्द हैं उन पर ईमान रखना, उनको यकीन करना बड़ा मुश्किल नजर आता है.
Isn't that right?
क्या ये ठीक है?
Sure, because God works through flesh.
क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये जिस्म के सबब से जाहिर होता है.
So the saints in light. We're in Colossians 1:12 now.
आइए दोबारा वापस कुलसियों के खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत की तरफ चले.
He's referring to the saints in light in verse 12.
Yeah, वो उन मुकद्दसों का जिक्र करता है जो नूर में हैं.
So that's saints that are walking in the present day word.
और ये वो मुकद्दस हैं जो कि आज के कलाम मुकद्दस में चल रहे हैं.
Who has delivered us from the power of darkness.
जिसने हमें तारीकी की इख्तियार से निकाला.
And translated us.
और उसने हमें तब्दील किया.
In whom we have redemption through his blood, even this forgiveness of sins.
जिसको जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है.
Now, each one of these things we're going to look at will become important.
और जितनी चीजों को आज हम इनमें से देखेंगे वो हमारे लिए अहम होती चली जाएंगी.
Who is the image of the invisible God?
क्योंकि वो अनदेखे खुदा की सूरत.
An image is what you see.
आप जानते हैं कि वो क्या बुत क्या है जिसको आप देखते हैं.
And so this one we're talking about was the manifestation, the visible part of the invisible God.
हम जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं ये वो खुदा है जो नादीदनी खुदा था लेकिन वो नजर आया.
The firstborn of every creature.
और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है.
So that means that it's not Jesus of Nazareth.
इसको यूं समझ लीजिए कि यहां जो लिखा है मौलूद है ये वो यीशु नहीं है जो नासरत का है.
He was born just a couple thousand years ago.
वो तो हम जानते हैं कि तकरीबन 2000 साल होने को है वो पैदा हुआ.
But this was the firstborn of everything.
लेकिन ये तमाम मखलूकात से पहले मौलूद था.
For by him were all things created.
क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं.
That are in heaven.
वो आसमान की.
That are in earth.
हाँ या जमीन की.
Visible and
देखी
invisible.
देखी हों या अनदेखी.
That would mean this dimension or other dimensions.
ये इस जुमरे की भी बात हो सकती है और अगले मरले की भी.
Whether there be thrones or dominions or principalities or powers.
तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें.
All things were created by him and for him.
सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुईं.
We understand created by him.
और वो सब चीजें से पहले है.
But we don't always understand for him.
लेकिन हम ये नहीं समझते कि हुआ तो ये कि ये नहीं समझते कि उसके लिए भी हैं.
This is Jehovah who wants to reveal himself.
ये खुदा है यहोवा जो अपने आप को जाहिर करना चाहता है.
That's why it's for him.
क्योंकि वो जाहिर करना चाहता है इसलिए जितनी पैदा चीजें हुई उसके लिए भी हैं.
It's his revelation.
ये उसका मुकाशवा है.
We happen to be included by grace.
और हम फजल के सबब से इसमें शरीक किए गए हैं.
But the plan was just
for God.
It's his purposes. It's for him.
ये जितना प्लान है ये खुदा का अपने मकसद के लिए है लेकिन हमें उसने फजल के सबब से अपने साथ शरीक कर लिया है.
And he is before all things.
और वो सब चीजों से पहले है.
And by him all things consist.
और उसी के वसीला से सब चीजें कायम रहती हैं।
He is the head of the body of the church.
वो बदन यानी कलीसिया का सर है।
Who is the beginning, the firstborn from the dead.
वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा।
That in all things he might have the preeminence.
ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो।
Preeminence.
Amen.
अव्वल दर्जा।
That's the number one place.
ये सबसे पहली जगह है।
He wants to be first in your living.
क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पहले दर्जे पे आना चाहते हैं।
First in your thinking.
आपकी सोच में।
First in your talking.
आपकी गुफ्तगू में।
First in your acting.
आपके अमाल में।
He wants to be number one in your life.
वो चाहता है कि उसको पहला दर्जा दिया जाए।
And Brother Branham, in Christ the Mystery of God Revealed.
By Branham ने इस मज़मून में मसीह जो खुदा के ज़हूर का भेद था ज़ाहिर किया।
Everything was working for this three-step program.
और उन्होंने बताया कि खुदा का सारा काम जो है इन तीन दर्जों के लिए काम कर रहा था।
First, to get the preeminence in a man.
ताकि इंसान के अंदर अव्वल दर्जा हासिल करे।
He did that in Jesus Christ.
उसने यीशु मसीह में से होकर ये किया।
Then to get the preeminence in the church.
और फिर इसके बाद के कलीसिया के अंदर उसको अव्वल दर्जा मिले।
That's what he's trying to do right now.
ये ही वो आजकल हमारे वसीले से कर रहा है।
And then take that last Adam with his Eve back to Eden.
ताकि वो उस आदम को दोबारा उस हवा के साथ मिलाकर वापस उनके साथ मिल जाए।
So what's the program right now?
और अब प्रोग्राम क्या है?
To God get the preeminence in the church, the true church.
ताकि खुदा इस सच्चे कलीसिया के अंदर अव्वल दर्जा हासिल करे।
Brother Branham said that God, the Spirit of God, was amber or yellowish green.
भाई ब्रैनम ने बताया कि खुदा की रूह का जो रंग है, ये था पीला या जर्द पीला।
And there is a mineral called amber.
और एक ऐसी धात है मादनी आता है जिसको हम एम्बर कहते हैं या पलाहट का रंग कहते हैं।
And I was reading about it.
और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था।
And it said if you put it under a fluorescent light,
अगर आप इसे तेज रोशनी के ऊपर रखें,
it fluoresces yellowish green.
तो वो हमें जब रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो पीली और सब्ज सी नजर आएगी।
The eternal spirit before Genesis 1:1.
हमेशा की कायम रहने वाली रूह जो के पैदाइश पहले बाप की पहली आज से पहले थी।
Now I don't know what theologian has ever had the courage to preach before Genesis 1:1.
मुझे ये नहीं पता कि वो लोग पैदाइश पहले बाप की पहली आज से पहले क्या किस तरह बयान कर सकते हैं या क्या कलाम दे सकते हैं।
But a prophet took us back there.
लेकिन खुदा नबी ने हमें वापस वहाँ वो लेकर गया।
So here's the eternal spirit.
यहाँ हम हमेशा कि जिंदगी को देखते हैं, रूह को देखते हैं।
The one that I said was all alone.
और जो कि हमेशा तन्हा और अकेली थी।
And in that eternal.
और इस हमेशा कायम रहने वाले में, इब्तिदा में रहने वाले में।
Perfect love.
उसके अंदर मुकम्मल प्यार था।
Perfect joy.
मुकम्मल खुशी।
Perfect satisfaction.
उसके अंदर कामल तसल्ली।
Perfect contentment.
और उस contentment, what you mean? इत्मीनान। उसके अंदर का बिल पक्का इत्मीनान था।
And we could go on with more perfects.
और हम आगे भी मुकम्मल चीजों के अंदर जा सकते हैं कई एक में।
That's the eternal.
ये हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं।
Listen.
सुनिए।
And you have a deposit of that in you.
और इनका जो हिस्सा है वो आपके अंदर भी है।
Down in the soul.
जो कि जान के अंदर महफूज है।
And God is trying to get you to live from the inside of the inside.
और खुदा चाहता है कि आपके अंदर जो अंदर चीज है, अंदर के अंदर जो चीज है, उसके सबब से जिंदा रहे।
And when you don't feel that satisfaction and contentment,
और जब आप वो तसल्ली और इत्मीनान नहीं पाते हैं,
it's because you've drifted away from your soul out into your spirit or your body senses.
तो इसका मतलब ये है कि आपकी जान, रूह और बदन के अंदर कुछ जुदाई पैदा हो गई है।
This eternal spirit,
हमेशा की रूह जो है,
invisible.
जो कि नादीदनी है,
All alone except for one thing,
सिर्फ एक चीज के लिए, ये हमेशा के लिए,
he had thoughts,
उसके अंदर सोच है,
which Brother Branham called attributes,
जिसको भाई ब्रैनम ने खुसूसियात कहा है।
In his mind, he says to himself,
अपने ज़ेहन के अंदर वो अपने आप को कहता है,
I'd like to be a god,
कि मैं खुदा होना चाहता हूँ,
an object of worship,
और मैं लोग मुझे मेरी प्रस्तुति करें।
So that means he has to create something that will worship him.
इसलिए ये जरूरी है कि वो कोई चीज पैदा करे जो उसकी प्रस्तुति कर सके।
I'd like to be a savior.
मैं एक निजात दहिंदा बनना चाहता हूँ।
So somebody has to be lost.
तो किसी को तो खो जाना पड़ेगा।
I'd like to show him I'm a healer.
मैं अपने आप को एक शफा देने वाला बताना चाहता हूँ.
So in his plan, someone has to get sick.
तो किसी को बीमार होना चाहिए जिसके लिए मैं अपने आप को एक शफा देने वाला जान पहचान करा सकूं.
So here's the eternal spirit.
यहाँ हमेशा रहने वाली रूह है.
With his attributes.
अपनी खसूसियात और सफात के साथ. कई लफ्ज ने जरा इधर बंदर लगा होता है तो याद नहीं होता, थोड़े जब बोल पिया करो अगर किसी को पता लग जाते.
Now we'll test your vocabulary.
Yeah, that's what I have told them already.
He wants to be trusted.
वो चाहता है कि उस पर एतमाद किया जाए.
He wants to be believed.
वो चाहता है उस पर
बिलीव,
उस पर यकीन रखा जाए. Yeah.
He wants to be a husband.
वो एक शौहर बनना चाहता है.
Which means he has to create a wife.
तो इसका मतलब है उसके लिए बीवी होनी चाहिए.
He wants to be God, an object of worship.
वो खुदा होना चाहता है ताकि लोग उसकी प्रस्तुति करें.
Creator.
तखलीक करने वाला.
Father.
बाप.
Savior.
बचाने वाला.
Provider.
मुहैया करने वाला.
Shepherd.
निगबानी करने वाला.
Healer.
शफा देने वाला.
Redeemer.
छुड़ाने वाला.
Guide.
राह दिखाने वाला.
Deliverer.
फिर यहाँ किसी से छुड़ाने वाला.
Judge.
जज जो है
King.
बादशाह, अदालत करने वाला बादशाह.
Family.
एक खानदान.
Let me stop there just a moment.
दो छोड़ दिए हैं पर मैं कामयाब हो गया हूँ. आमीन.
get the picture now.
अब इसको अपने ज़हन के अंदर इसकी तस्वीर बनाएं.
God is not going to create a family.
खुदा जो है वो एक खानदान नहीं बनाएगा.
God is going to be a family.
खुदा बजाते खुद एक खानदान बनेगा. आमीन. किस तरह
The whole plan of God is just God dividing himself.
ये जो खुदा का सारा प्रोग्राम हमें नजर आता है ये यूं लगता है कि खुदा अपने आप को तकसीम कर रहा है.
We have to get this thought out of our mind.
हमें अपने ज़हन से ये ख्याल निकाल देना चाहिए
that we are poor, lost little humans down here.
कि हम बड़े गरीब और छोटे से इंसान हैं इस दुनिया के ऊपर.
And the great God has mercy on us.
और खुदा अज़ीम ने हम पर रहम किया है.
And says if you can believe what I'm doing for you.
और उसने कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अगर तुम इस पर ईमान रखो
I'll give you eternal life.
तो मैं आपको हमेशा की जिंदगी दूंगा.
That is not the picture.
ये तस्वीर मत देखिए.
Catch that. That is not the picture.
ये खुदा का प्रोग्राम नहीं है. ये तस्वीर नहीं है.
Go to Acts chapter 13.
आइए इमाल उसके 13वें बाब के अंदर चलकर देखें. अमाल की किताब रसूलों के अमाल और उसका 13वां बाब.
Paul and Barnabas are preaching to the Jews.
यहाँ पालूस जो है वो यहूदियों को कुछ सिखा रहा है.
And they're arguing over whether this is truth or not.
और वो उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं क्या ये सच्चाई है कि नहीं. 13वां बाब वर्स.
And I want you can go ahead and read verse 44 and 45 and 46.
44, 44वीं, 45वीं और 46वीं आयत. दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हस से भर गए और पालूस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे. पालूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि ज़रूर था कि कलाम खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए लेकिन चूँकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं. यहाँ थोड़ा सा रुकिए.
We see a law of God here.
यहाँ हम खुदा का प्यार देखते हैं. खुदा का कानून देखते हैं.
Paul said it was necessary that the word of God be preached to you first.
पालूस ने कहा कि ये जरूरी था कि पहले तुमको खुदा का कलाम सुनाया जाए.
That's the way God always works.
यही वो तरीका है कि खुदा जिस तरह हमेशा काम करता है.
The one who had the previous light,
जिसके पास पहले से रोशनी है,
and now God is going to give more light,
तो खुदा अब उसको और रोशनी देना चाहता है.
He goes to that group that had the previous light,
और वो उस ग्रुप के पास जाएगा जिसके पास पहले से कुछ रोशनी मौजूद है.
And gives them an opportunity to come into more light.
तो वो उनको मौका देगा कि वो थोड़ी सी रोशनी में बड़ी रोशनी के अंदर आए.
Because all the other groups have already proven they're unbelievers.
क्योंकि दूसरे ग्रुपों ने इस बात का इजहार कर दिया है कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते, वो बेईमान हैं.
Oh, that sounds hard, doesn't it?
क्या ये मुश्किल सा नजर नहीं आता है? औखा लगता है ना इंजे?
He says, and then now you have counted yourself unworthy of everlasting life.
और लिखा है क्योंकि तुमने हमेशा की जिंदगी को रद्द कर दिया है.
So he says, now we're going to turn from the Jews to the Gentiles.
अब हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होंगे.
And then he quotes the prophecy that he's taking to himself.
और फिर वो उस पेशनगोई का जिक्र करता है जो उसके पास है.
About being a light to the Gentiles.
कि वो किस तरह से गैर कौम के लिए रोशनी होगा.
Now verse 48.
इसकी 48वीं आयत को पढ़ेंगे.
And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord.
Chapter 13?
No, we're in chapter 13 and we're at verse
48. जी जी ठहर जी. गैर कौमों वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए.
And as many as were ordained to eternal life believed.
और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए.
We always think if you can only believe, you'll be ordained to life.
हम हमेशा यही ख्याल करते हैं कि अगर आप यकीन कर लाएं, ईमान ले आएं, तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी.
It's the other way around.
ये इसके उल्ट है.
Because you are ordained to life, that's why you believe.
क्योंकि आप चुने गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं, इसलिए आप पर जिंदगी जो है वो आपके पास आएगी.
हालेलुया.
अगर मुकर्रर नहीं किए गए तो जिंदगी मिल नहीं सकती.
या
जिना मर्जी कलाम
पढ़े. God is going to become a family.
इसलिए खुदा को एक खानदान बनना है.
Comforter.
और वो इत्मीनान देने वाला है.
Counselor.
और वो हमारी रहनुमाई करने
वाला. That's just a little bit of what was in him.
और इससे कुछ थोड़ा कम है जो कुछ उसके अंदर था.
Now remember, Jehovah wants to reveal himself.
याद कीजिए कि यहोवा खुदा अपने आप को जाहिर करना चाहता
था. So he has to allow a plan through which he can unveil himself.
तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए था जिसके सबब से वो अपने आप को जाहिर कर सके.
Genesis chapter 1.
पैदाइश की किताब उसका पहला बाब.
Verse 26.
और उसकी 26वीं आयत.
And God said, let us make man in our image after our likeness.
फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानत बनाएं.
Now there's that word us you were asking about a moment
ago. आपने पूछा था कि हम में से एक की मानत, तो यहाँ लफ्ज आ गया है हम में से जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे.
Because we have two manifestations here.
हम यहाँ दो जहूरों को देखते हैं.
And you'll see it as we go on here.
आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप खुद खुद समझ जाएंगे.
But it is not two persons.
ये दो शख्सियतें नहीं हैं.
It's moving into two, I'll say manifestations. That's
मैं यूं ही कहूँगा कि ये दो जहूरों की तरफ हमें ध्यान लगाती है.
Now, verse 27 says.
उसकी 27वीं आयत में लिखा है.
So God created man in His own image.
खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया.
Let us make man in our image.
उसने कहा आइए इंसान को अपनी शबी पर पैदा करें.
And God created man in his own image.
और खुदा ने अपनी शबी पर उसको पैदा किया.
But at this time,
लेकिन इस वक्त
God himself had never come to flesh.
खुदा अभी तक खुद जिस्म में नहीं आया था.
So the flesh man is not the image of God.
तो जो जो जिस्मानी आदमी है, ये जो गोश्त पोश्त है, ये खुदा का की शबी नहीं है.
What is the image of God?
खुदा की शबी क्या है?
John 4 says God is a spirit.
जो यूहन्ना 4:4 कहता है कि खुदा रूह है, नूर है. उसकी शबी नूर है. आमीन.
God is a spirit.
खुदा जो है वो रूह है.
So this was a spirit creation.
तो ये रूहानी तौर पर तखलीक थी.
And he did not create a man here.
और उसने यहाँ एक आदमी को शबी पर पैदा नहीं किया.
He created all man right here.
उसने सब आदमियों को यहाँ तखलीक कर दिया.
Not every human on earth.
हर इंसान को, जिस्मानी इंसान को नहीं जो इस जमीन पर है.
All of his family.
उसकी सारी वो खानदान जो रूह के अंदर है.
They were created right here.
वो यहाँ तखलीक हो गए.
And right here, the book of life, Lamb's book of life starts coming into existence.
और यहाँ ही से बर्रा की किताब हयात का आगाज होता है.
First Corinthians.
समझ आइए कि नहीं, फिर दोबारा करिए.
Excuse me, Second Corinthians, chapter 5.
दूसरा करिंथियों उसका पांचवां बाब. ओके, दूसरा करिंथियों पांचवां बाब.
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens.
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं.
So when you die, you have a house waiting.
तो जब आप इस जहान फान से कूच कर जाते हैं तो आपके लिए एक घर वहां मुंतजर है.
Body waiting.
वहाँ एक जिस्म जो है वो मुंतजर है आपका.
And it says this body is eternal.
वो जो वहाँ घर है वो अबदी है.
Now what did we learn about eternal?
हमने अबदियत के बारे में क्या सीखा है?
One, no beginning, no end.
एक जिसका ना शुरू है ना इंतहा है.
Two, only God is eternal.
दूसरा सिर्फ खुदा ही ऐसा ऐसी शख्सियत है जिसका ना कोई इब्तदा है ना कोई खात्मा है.
So this body is some part of God.
तो ये जो जिस्म वहां इंतजार कर रहा है ये खुदा का कुछ हिस्सा है.
What part of God?
ये खुदा का कौन सा हिस्सा है?
It came from his thoughts.
ये उसके ज़हन से जो बात आई वो है.
God's thoughts are literal, eternal, fixed.
खुदा के ये जो ख्यालात हैं ये हमेशा कायम रहने वाले हैं.
He is not adding to his knowledge.
ना वो अपने इल्म के अंदर अजाफा कर रहा है.
For he already knows all things.
क्योंकि वो उसको सारी चीजों का पहले ही से पता है.
So in the church age book it says,
कलीसिया ज़माने की किताब में यूं लिखा है,
it says the plan is not like a contractor.
ये जो स्कीम है ये उस तरह से नहीं है जिस तरह के कोई प्लान किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई सड़क बनाने के लिए दे दी जाती है कि ये करना
है. Who is working from a blueprint?
जो कि एक नक्शे को देखकर उसके मुताबिक अमल में लाता है.
That will one day become a building.
और वो हम देखते हैं कि अगर उस प्लान पर वो चलता रहे तो वो नक्शा एक दिन बिल्डिंग. ये खुदा का है.
In his thinking.
उसके सोच में जो कुछ है.
It's all there.
वो हमेशा के लिए कायम है.
In Romans 8 it says.
रोमियो 8 बाब में ये लिखा है.
Whom he has justified.
जिनको उसने पहले से जाना.
How many are justified?
कितने हैं जो मुकद्दस तकदीस किए गए हैं. आमीन.
Okay. He has also sanctified.
उसने उनको मुकद्दस भी किया है.
How many sanctified?
कितने हैं जो मुकद्दस हो चुके हैं.
आमीन.
आमीन.
Be careful on the next part.
अगले पर जरा गौर कीजिए.
He has also glorified.
उसने उनको जलाल भी बख्शा है.
Now I'm not going to ask you.
मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितनों को जलाल मिल गया है.
Somebody might raise their hand.
शायद कोई हाथ उठा ले.
Why does it say that?
यो क्यों ऐसा कहता है?
Because God already knows the end from the beginning.
क्योंकि खुदा जो है वो इख्तिताम को भी जानता है कि उसने कहां से शुरू किया और कहां खत्म होगा.
So in his mind it's finished.
उसके ज़हन के अंदर तो ये बात मुकम्मल और खत्म हो चुकी
है. Justified, sanctified, glorified.
जो कि हम देखते हैं तकदीस और मुकद्दस होना और जलाल का बनना.
But we're trapped in time.
लेकिन हम वक्त ने हमें घेर रखा है.
Living these things out.
और इन चीजों को हम उसके स्टेज बाय स्टेज देखते हैं.
But God knows it will come to pass.
लेकिन खुदा ये जानता है कि ये वक्त पर मौजूद में आएंगी.
So in his mind,
उसके ज़हन के अंदर,
it's all finished.
और सब कुछ जो है वो मुकम्मल है.
The Bible says, though the works were finished from the foundation of the world.
उसका काम कहता है कि उसका सारा काम जो है वो इब्तदा से पहले बिगनिंग में शुरू ही में मुकम्मल हो चुका है.
Now, God in his great thinking,
खुदा अपनी अजीम सोच के अंदर,
with all of his attributes,
अपनी तमाम सिफात के साथ,
Revelations 13:8 says,
मुकाशफा 13 बाब पर उसकी 8वीं आयत में लिखा है,
The Lamb was slain before the foundation of the world.
के अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा.
Where did that happen?
ये कहाँ हुआ?
In the mind of God.
खुदा के ज़हन के अंदर. आमीन.
He knew his family would fall.
उसको पता था कि उसका खानदान जो है वो गिरेगा.
So he knew he couldn't lose them.
तो वो उसको ये भी पता था कि वो उसको खोने नहीं देगा.
So he had to make a way for all of those whose names were already on the book.
तो उसने उनके लिए रास्ता बनाना था जिनके नाम किताबे हयात में बनाए आलम से पेशतर लिखे गए थे.
So it was a finished work in his mind.
उसके ज़हन के अंदर ये मुकम्मल काम है.
Scripture says you were chosen in Him before the foundation of the world.
कलाम कहता है कि आप इब्तदा से ही उसके ज़हन के अंदर चुनाव के अंदर थे. आमीन.
So we have stepped down into time.
अब वक्त के लिहाज से हम दर्जा बदर्जा चल रहे हैं.
During this time, God is unveiling Himself to us.
और इस वक्त में खुदा हमारे ऊपर अपने ज़हूर को ज़ाहिर कर रहा है.
Living out His attributes.
और वो हमें अपनी सफ़ात ज़ाहिर कर रहा है.
And then when our school of life is over.
और जब हमारी ये स्कूल का ज़िंदगी पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाएगा.
Then we go to that body that was created.
created for us before the foundation of the world.
तो फिर हम उस बदन के अंदर दाखल हो जाएंगे जो इब्तिदा से पहले हमारे लिए तैयार की गई और अब्दी है. आमीन.
हालेलुया.
हालेलुया.
Then the prophet says, if you have a body waiting,
और नबी कहता है अगर कोई बॉडी आपका अगर कोई जिस्म आपका मुंतजर है,
then that's predestination.
तो ये तो फिर वो पहले से जानना है.
Because there isn't going to be a body there that nobody goes to it. He said, I'm all alone.
तो वहाँ कोई ऐसा जिस्म नहीं है अगर उसके अंदर कोई जाकर दाखिल ना हो तो फिर वो जिस्म वहाँ पड़ा वो कहेगा मैं तो अकेला ही हूँ.
Matthew 18.
मत्ती की अंजील और उसका 18वां बाब. मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब.
Verse 10.
और 18वें बाब की हम आयत पढ़ेंगे.
Take heed that you despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
दसवीं है ना. खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान के फरिश्ते मेरे इनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप के मुंह का मुंह हर वक्त देखते हैं.
Their angel.
उनके फरिश्ते.
Their messenger.
उनके पैगाम रसां.
That's your guardian angel.
वो आपके रहनुमा फरिश्ते हैं.
That's the body you'll go to.
और ये वो जिस्म है जिसको जिसमें आप दाखिल होंगे वो देखता रहता है.
Brother Branham told us.
भाई ब्रैनम ने हमें बताया.
He said your theophany is watching over the forming of Christ in you.
उन्होंने हमें ये बताया है कि जो आपका रूहानी बदन ऊपर है वो आपकी तरफ मुतवज्जो है ताकि आपको अपने अंदर ले ले.
And he knows what you have need of.
और उसको ये भी पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है.
At this particular time in your walk.
इस वक्त जब कि आप इस दुनिया के अंदर चल रहे हैं.
So he said he puts a call in your heart.
तो इसी सबब से वो आपके दिल के अंदर एक बुलाहट देता है, बुलाता है.
And you're saying, oh God, I need something.
तो फिर आप कि ये पुकार है, खुदावन मुझे किसी चीज की जरूरत है.
He says, then he sends just the right preacher across the pulpit.
आमीन. तो फिर आपके पास वो इंतजाम करता है कि किसी ऐसे खादम को भेजे जो हकीकी कलाम को पेश करे.
To feed you the spiritual vitamins and minerals you need.
ताकि वो आपको रूहानी मादनियात और मिनरल्स और सारी चीजें वहां
At that time for the forming of Christ in you.
और ये वो वक्त है कि खुदा आपके जिस्म के अंदर तब्दील होता है, रूनुमा होता है.
Amen.
Amen.
Now we're already beginning to see the purpose of the end time message.
हमने देखना शुरू कर दिया है कि आखिरी घड़ी के पैगाम का क्या मकसद है.
To bring the bride into a rest.
ताकि वो दुल्हन को आराम के अंदर दाखिल करें.
And get her out from all this legalism.
और इस तमाम जो हम पर कानूनी चीजें हैं इनसे हमें आजाद करें.
Yes, we want to live a proper life.
हम एक अच्छी जिंदगी रहना बसर करना चाहते हैं.
Without holiness, no man shall see God.
क्योंकि लिखा है कि मुकद्दस हुए बगैर खुदा को कोई ना देख सकेगा.
But we respond to that because we love him.
हम इसका उसको यूं इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं.
Not because we're afraid of hell.
इसका ये मतलब नहीं कि हम दोजख से डरते हैं.
It's secure.
हमारे लिए वो एक महफूज जगह है.
It's finished.
ये खत्म हो चुका है.
I remember on one tape Brother Branham was talking.
मैं जानता हूँ कि एक टेप में भाई ब्रैनम ने यूं कहा.
And he says now the secret to the supernatural.
उसने जो supernatural उसके बारे में एक ख्याल हमें दिया है जो भेद है.
How many want to know the secret to the supernatural?
कितने हैं जो ये जानना चाहेंगे इस बात के लिए जो पोशीदा है.
He said now here it comes.
उसने कहा ये देखिए.
The secret to the supernatural.
और ये जो focal fitrat के दरमियान एक भेद है.
Here it is.
यहाँ है वो.
Are you ready?
क्या आप तैयार हैं?
Yes.
Relax.
तो फिर आराम से सुनिए. ढीले पड़ जाए.
Relax.
Yeah.
And then the Christ that's in you can live himself out.
तो खुदा जो आपके मसीह जो आपके अंदर है वो अपना जहूर आप में से करेगा.
But as long as you're trying to get the job done yourself.
और जब आप बड़ा जोर लगा रहे हैं कि काम हो जाए.
Then you are not living from the inside of the inside.
तो फिर आपके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है उसका साथ आप नहीं जिंदा रहे.
You're living from your spirit man or your flesh man.
आप इस जिस्मानी बदन और इस जिस्मानी रूह के साथ आपका लगाव है.
But God wants you to rest in the Christ that lives in you.
आमीन. खुदा चाहता है कि मसीह जो आपके अंदर है आप उसके अंदर आराम करें.
हालेलुया.
हालेलुया.
All right, now watch this just a moment.
एक लहमा के लिए इसको देखिए.
This is the invisible God.
ये नादीदनी खुदा है.
only with his thoughts of what he wants to declare.
Sirf un khayalat ke sath jo wo zahir karna chahta hai.
And so here we're going to give it the same slide now on the edge.
Hum usi slide ko dobara ek kinare par dekhenge.
And now his thoughts are going to move into manifestation.
Ab hamara ye jo aghaaz tha ye zahir karne pe wajood mein aane ko hai.
So now what is a word?
Ek word.
Word?
Kalam kya hai?
A word is a word is a thought expressed.
Lafz kya hai? Ye wo hai cheez hai jo bayan ki jati hai.
So when the invisible God wanted to express his thoughts,
jab nadidni khuda ne apna izhar karna chaha,
out comes the word,
to usme se phir kalam nikalta hai,
which is the logos,
jisko hum logos ya kalam, so gaur se suniye,
is Christ,
jo ke masih khudamand hai.
Christ is the anointed word.
Khudamand yesu masih masa kiya hua kalam hai.
This is the firstborn of every creature.
So, वो सब चीजों से पहले मखलूक की खलक किया गया.
By him, all things were created.
उसके सबब से सारी चीजें जो हैं वजूद में आईं.
It's Christ.
ये मसीह खुदामंद है.
But now, get your picture straight.
क्या मैं इस तस्वीर को आपके ज़हन के अंदर ठहरा सकता हूँ?
This invisible God,
ये जो खुदा हमें नजर नहीं आता है,
has moved into manifestation.
उसने अपना ज़हूर किया है इस तरह से आगे चलकर.
He's no longer invisible.
अब वो नादीदनी खुदा नहीं रहा.
He's expressing himself.
वो अपने आप को बयान कर रहा है.
He calls it the word.
कलाम के सबब से.
Christ.
मसीह खुदामंद.
It's a theophany into which God steps.
खुदा वो अब्दी और रूहानी जिस्म है जिसमें खुदा ने वजूद लिया.
Listen.
सुनिए.
And he says, "This is my son."
तो उसने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है.
Amen. Hallelujah.
Now, if you can see the very purpose of the first son,
अगर आप इस बात को जान जाएं कि उसके पेलौठे का क्या मकसद था मतलब था,
then you'll see your purpose.
तो फिर आपको अपना मकसद जो है वो भी मिल जाएगा कि आप क्या हैं.
The purpose of this son was to declare the father.
तो उसके बेटे का ये मकसद था कि वो खुदा बाप को जाहिर करे.
The purpose of this son was to be a tabernacle through which God could manifest himself.
तो उसके बेटे का मकसद था कि एक ऐसी हैकल हो जिसमें से खुदा अपना इजहार कर सके.
Gospel of John.
यूहन्ना की अंजील.
Chapter 1.
उसका पहला बाब.
Verse 14.
और उसकी.
And the word was made flesh and dwelt among us.
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा.
Okay, this logos stepped into a virgin born tabernacle.
ये कलाम जो है ये मुकद्दस कमारी के अंदर जो है उस हैकल के अंदर दाखिल हुआ.
Verse 18.
इसकी 18वीं आयत.
No man has seen God at any time.
खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा.
The only begotten son which is in the bosom of the father, he has declared him.
खलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया.
Brought him into full revelation.
जो कि उसे पूरे मुकाशफे के अंदर ले आया.
Did Jesus come to say, I am the son of God?
और यीशु ने कहा मैं खुदा का बेटा हूं.
No, he didn't do that.
No, उसने ऐसा नहीं कहा.
He said, I don't do the works.
उसने कहा मैं ये काम नहीं करता.
It's not me.
मैं नहीं.
It's my father that dwells in me.
जो मेरा बाप है जो मेरे अंदर सुकूनत करता है.
I don't even have any doctrine of my own.
और मेरा तो कोई डॉक्टर भी नहीं है.
I just tell you what he tells me.
मुझे मैं आपको वही बताता हूं जो वो मुझे बताता
है. That's the way we're supposed to be.
और यही वो सबब है जिस तरह हमें भी होना चाहिए.
We are supposed to be as ministers spiritual eunuchs.
हमें ऐसे मुकद्दस लोग होना चाहिए.
We have no seed of our own.
हमारा अपना कोई बीज नहीं है.
Logos.
ये कलाम जो है.
So now the invisible God is no longer invisible.
अब जो ये नादीदनी खुदा था वो अब हमें नजर आता है.
He's moved into the form of the logos.
अब वो फिर जो जाहिर हुआ कलाम की सूरत में चला गया.
Strong's concordance,
मजबूत हवाला जात.
Concordance, you understand?
Yeah.
Logos.
ये logos जो है कलाम जो है.
What does it mean?
इसका मतलब क्या है?
Something said.
कोई जो चीज कही गई है.
Including the thought.
और उन ख्यालात को भी इसमें शामिल करते हुए.
The divine expression.
ये खुदा का वो ख्याल जो बयान किया गया है.
Christ.
जो यीशु मसीह है.
That's the definition right in the concordance.
ये concordance जो किताब है, Bible concordance, उसके अंदर ये इसकी तारीफ है.
There are two Greek words. in the Bible,
Bible ke andar do Yunani lafz hain
that are translated word,
jo ke jinka ke tarjuma kiya gaya hai.
One is logos, one is rhema.
Ek logos hai, ek rhema hai.
We see here that logos includes the thought.
Hum dekhte hain ke is lafz logos yani kalam ke andar khuda ke khayalat shamil hain.
As you read the Bible or the newspaper word by word by word, that's rhema.
Jab aap बाइबल को या अखबार को लफ्ज़ बा लफ्ज़ करते हैं तो इसको हम लफ्ज़ रीमा कहेंगे.
If you catch the entire thought of the author, that's logos.
अगर आप लिखने वाले के असली ख्याल तक पहुंच जाएं तो फिर वो कलाम है.
In regarding the Bible,
बाइबल के अलावा,
while the non-elect are arguing over the rima,
जबकि वो लोग जो चुनिंदा नहीं हैं इस लफ्ज रीमा के खिलाफ बातचीत करते हैं,
the elect are feeding on the logos.
तो जो चुनिंदा लफ्ज हैं वो जो चुनिंदा लोग हैं वो कलाम पर गुजारा कर रहे हैं.
Now what's the difference between rima and logos when you read your Bible?
गौर कीजिए इन दोनों लफाज के दरमियान फर्क क्या है जब आप बाइबल को पढ़ते हैं.
It's revelation.
ये मुकाशफा है.
You can't catch the mind of God unless he gives it to you.
अब उस वक्त तक खुदा के ज़हन तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो आप पर इस राज को खोले ना.
That's why the prophet stressed, get in the spirit first, then get in the word.
इसीलिए नबी ने हमेशा ये कहा कि पहले रूह के ताबे हो फिर खुदा के कलाम को पढ़ो.
Okay, this logos,
ये कलाम,
this logos,
लफ्ज logos,
it is Christ,
ये मसीह है.
It is a theophany.
ये वो अब्दी जिस्म है.
It is a body for Jehovah.
ये यहोवा का बदन है.
It is the anointing.
ये मसा है.
It is the son.
ये बेटा है.
In a prefigure.
In a
prefigure.
पर prefigure. कामल हिंद मुजस्मा.
Yeah. Did we get it?
हाँ.
Okay. Now remember, Ephesians 1:4 says you were chosen in him, in Christ, in the logos.
इफिसियों के खत में लिखा है कि आप उसके सबब से चुने गए हैं.
So here's that invisible God with his attributes.
देखिए कि वो नदीदनी खुदा अपनी सिफात के साथ.
And he thought of you.
और उसने आपके बारे में सोचा.
That's the family of God right there.
जिसमें हम मिलकर खुदा का खानदान बनते हैं.
But when he moved to expression,
जब उसने इसको खोलना या बयान करना शुरू किया,
Now you're in here.
तो अब आप यहां हैं.
You're not declared yet.
आपका अभी ऐलान नहीं हुआ है.
You're not manifested yet.
अभी आपका ज़हूर नहीं हुआ है.
But you're part of that body.
लेकिन आप उस बदन का हिस्सा हैं.
Which is to reveal Jehovah.
जिसने के यीशु को, जिसने खुदा को जाहिर करना है.
And each one of them has their time when they will declare Christ on earth.
और हर एक के लिए वक्त मुकर्रर है कि कब वो इसका इजहार करेगा.
The logos,
कलाम,
the birth of the son,
बेटे का, बेटे की पदाइश.
In the beginning was the word.
हमने पढ़ा के इब्तिदा में कलाम था.
That's this.
ये लोगास जिसे कहते
हैं. The firstborn of every creature.
जो हर खलकत से पहले मालूद था.
By him were all things created.
और उसी के सबब से तमाम चीजें तख्लीक की गईं.
Ephesians.
इफिसियों के खत में आई.
Chapter 3.
उसका तीसरा बाब.
9.
हाँ जी, नामियात.
And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world has been hid in God who created all things by Jesus Christ.
मुझ पर जो सब
सब मकसद में
वर्स 9 और किधर गया
और सब पर ये बात रोशन करूं और सब पर ये बात रोशन करूं
So what's the name of the logos?
ये फिर लोगास का क्या नाम है? मिल गई.
What's the name of the logos?
ये लोगास का नाम क्या है?
Somebody tell me.
कोई मुझे बताइए.
Jesus Christ.
Christ. Amen. Yes.
All right.
Okay,
now let's go up to verse 14 and 15.
Ephesians 3.
Yes.
Verse 14.
For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named.
इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिसने आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद, जिसे नामजद है.
What's the name of the Father?
तो बाप का क्या नाम है? यीशु.
Jesus.
Amen.
The Logos.
जिसको हम लोगास कहते हैं.
Jesus Christ.
कलाम
जिसको हम. The name of your Savior.
ये आपके बजाय जादिंदे का नाम है.
Jesus Christ.
खुदाम यीशु मसीह.
Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of Jesus Christ.
काम या कलाम जो कुछ भी करते हो खुदाम यीशु मसीह के वसीला से करो.
So then who is Jesus Christ?
तो ये यीशु मसीह कौन है?
He's more than the man that was born of the Virgin Mary.
ये उस मुकद्दसा मरियम से इंसान पैदा होने वाले से बढ़कर है.
He is the living word.
वो जिंदा कलाम है.
That is how Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
और इस तरह से यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है.
Because he is always the living word, the I am.
जो हमेशा जिंदा रहने वाला कलाम है जिसका मतलब है मैं हूँ.
Hallelujah.
Hallelujah.
So now when we baptize in the name of the Lord Jesus Christ.
और अब जब हम किसी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं.
That's easy to understand.
ये तो बड़ा आसान है समझना.
The fullness of the Godhead bodily.
क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो तसलीस है या खुदा के दर्जात हैं इनको समझना जो है अच्छा है.
Father, Son, Holy Ghost, that's the Godhead.
आप जानते हैं कि बाप बेटा और रूह कुदस ये तीन अकनूम लोग मानते हैं.
But what's their name?
लेकिन उन तीनों का नाम क्या था?
Jesus Christ.
खुदावंद यीशु मसीह.
Amen.
Amen.
So that's why we're baptized in that name.
इसलिए हम इस नाम में लोगों को बपतिस्मा देते हैं.
Amen.
Amen.
So now in this logos,
इस logos यानी कलाम के अंदर,
this is God's thoughts,
ये खुदा का ख्याल है, ये उसकी सोच है,
predestinated to manifestation in His selected time on earth,
जो कि उसने पहले से जाना मुकर्रर कर लिया कि ज़मीन पर वो किस तरह और किस वक्त वजूद में लाएगा.
They listen,
सुनिए,
that's the Lamb's Book of Life,
ये ज़िंदगी बर्रा की किताबे हयात है, समझा गई है?
It's not a book that looks like this.
ये किसी इस किताब की तरह नहीं है जो नजर आती है.
A book is full of words.
ये किताब जो है ये अल्फाज से भरी हुई है.
The logos is full of words.
तो logos जो है ये भी अल्फाज से भरा हुआ है.
When you read a book, you get an understanding of the author.
और जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू किसी किताब को पढ़ते हैं तो मुसन्नफ की सोच और समझ आपके सामने आती है.
And the Bible says you are written epistles.
हाँ, और बाइबल कहते हैं तुम खुदा के जिंदा खत हो.
Read of all men. Why? Because you are the living logos in your measure.
क्योंकि आप अपने अंदर खुदा और खुदा के वजूद में आप एक जिंदा खत हैं.
Amen.
Amen.
Now this book.
ये किताब.
Another book.
एक और किताब.
Here is our earthly representation through Adam and Eve, our fleshly parents.
यहाँ हम देखते हैं कि हमारी ज़मीनी हालत जो है आदमी आदम और हवा के सबब से जाहिर हुई.
Now that's the book of life.
ये हमेशा की ज़िंदगी है.
Predestinated book thoughts. Life, that's the Lamb's book of life.
Second.
Predestinated thoughts of God. That's the Lamb's book of life.
ये जो पहले से जाना जाना जो है ये खुदा के बर्रा की किताबे हयात है.
But the book of life is your record of your natural life.
ये जो हमें किताबे हयात है ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी के कामों की किताब है.
And it starts at least 4 generations back.
और इसका आगाज तकरीबन आज से 4 पुश्ते पहले शुरू हुआ.
Because God bred your great grandparents to your grandparents to your parents right on down to bring you.
खुदा ने आपको वजूद में लाने के लिए आपके अबाव जदाद से चौथी पुश्ते शुरू किया और आप अब वजूद में हैं.
Because he wanted you to have a certain nature for your place in the body of Christ.
क्योंकि वो चाहता था कि आपकी फितरत के अंदर कुछ ऐसी गुंजाइश और बात हो ताकि आप खुदा यीशु मसीह का बदन बन सकें.
And so God bred all that into you.
और खुदा ने वो सब कुछ आपके अंदर पैदा किया.
And then when you're born again.
और जब आप नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करते हैं.
All that you got from mom and daddy that's not Christ-like, he has to get that back out again.
और जो कुछ आपने माँ बाप से हासिल किया है और वो मसीह की तरह नहीं है उसको उसने अपने से आप में से निकालना है.
Yeah, amen.
Amen. Amen.
Okay, so now the book of life.
इसलिए किताबे हयात.
When you're born to earth.
जब आप जमीन पर पैदा होते हैं
a record begins.
और तो आपका रिकॉर्ड शुरू हो जाता है.
Your first lie,
आपकी पहला झूठ.
You steal something,
और चोरी.
You're thinking wrong,
और आपकी गलत सोच.
All everything,
और सारी चीजें लिखनी शुरू हो जाती हैं.
इफ यू वर ऑल अलोन,
अगर आप अकेले हैं,
यू आर इन डार्कनेस,
और आप तारीकी में हैं,
इफ यू आर इन द लाइट,
और अगर आप रोशनी में हैं,
गॉड सीज इट ऑल,
खुदा सब को देखता है.
एवरीथिंग इज इन देयर,
उस किताब हयात के अंदर ही सब कुछ लिखा होता है.
डज दैट स्केयर यू?
क्या ये आपको डरा रहा है? क्या खौफ आ रहा है? नहीं.
ओके, नाउ यू कम अप टू वेयर यू मीट द जीसस ऑफ योर डे.
अब एक वाक्या, एक जगह आती है जहां आप अपने वक्त के खुदावंद यीशु मसीह को मिलते हैं.
नाउ यू आर प्रीडेस्टिनेटेड टू द जीसस ऑफ योर डे.
आप पहले से चुने गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए.
नाउ व्हाट डज दैट मीन?
इसका मतलब क्या है?
That's why a Pentecostal message didn't make you happy.
इसलिए आपको पेंटिकॉस्टल पैगाम के अंदर वो खुशी हासिल ना हुई.
That wasn't your Jesus.
क्योंकि वो आपका यीशु नहीं था.
Maybe the Baptist message didn't make you happy.
हो सकता है कि आपको बैप्टिस्ट के पैगाम के अंदर खुशी ना मिली हो.
Though that was a good truth at that time when
it started. उस वक्त के लिए तो वो बिल्कुल अच्छी एक सच्चाई थी.
But that's not your Jesus.
लेकिन वो चूंकि आपका खुदा यीशु नहीं था.
You have to meet the revealed word you're predestinated to.
उस आपको उस पैगाम की तरफ मुतवज्जो होना था जिसके लिए आप मुकर्रर किए गए थे.
आमीन. When you meet that light.
और जब आप उस नूर को मिलते हैं.
And that light strikes that seed of predestination in you.
और वो रोशनी उस बीज को जो पहले से रखा गया है छूती है.
Then comes a new birth.
तो फिर एक नई पैदाइश हासिल होती है.
Listen.
सुनिए.
Now God takes this book of life.
अब खुदा इस किताब हयात को लेता है.
Throws it into the sea of his forgetfulness.
तो फिर आपने भूल जाने वाले समुद्र के अंदर उसे फेंक देता है.
There's no record.
क्योंकि उस आपके लिए अब उस वहां कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.
Hallelujah.
बस्ता बेखत्म हो गया.
And now you, the only listing God has of you is in the Lamb's book.
Amen. अब आपका नाम सिर्फ किताब हयात के अंदर लिखा जाएगा. किताब बर्रा की किताब हयात में लिखा जाएगा. Amen.
And there he sees you as he saw you before the foundation of the world.
और वहां वो आपको वैसा ही देखेगा जैसा कि इब्तिदा से पहले, बनाए आलम से पहले उसने आपको देख रखा है.
Amen.
Okay, keep listening now.
सुनिए जरा.
God does not see you.
खुदा आपको नहीं देखता.
He only hears your voice coming through the blood.
वो आपकी आवाज को सुनता है जो खून में से गुजर रही है.
And when he hears your voice,
और जब वो आपकी आवाज को सुनता है,
he turns to your theophany.
तो वो आपके उस अब्दी जिस्म की तरफ देखता है.
Because that's the only way he can see you.
क्योंकि वही एक तरीका है कि वो उस जिस्म को देख सकता है.
Justified, sanctified, glorified.
जो कि जिसको मुकद्दस हो चुका है, तकदीस हो चुकी है.
Isn't that wonderful?
क्या ये अच्छा नहीं है?
God cannot see sin through blood.
आमीन. खुदा खून के सबब से गुनाह नहीं देख सकता है.
Now that doesn't open the door for a wild life.
और ये जंगली जिंदगी के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता.
And we may have time to go into that. I don't know. Later.
और शायद हमारे पास वक्त ना हो कि हम उसके अंदर आज जा सकें.
Okay, now here's the scriptures we've looked at.
यह है वो कलाम जिसके ऊपर हमने देखा.
In the beginning God created heaven and earth.
इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया.
John 1:3.
यूहन्ना पहला 3.
All things were made by him, the word, and without him was not anything made that was made.
सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और उसके बगैर कोई चीज वजूद में ना आई.
So God created by the word.
खुदा ने कलाम के सबब से हर चीज को मखलूक किया.
In reading it sounds like there's a father over here and a son over here.
पढ़ने में हमें यूं नजर आता है कि दो बंदे ने, एक बाप है इधर तो बेटा इधर, दोवें गलबात कर रहे हैं.
So it looks like us.
ये हमारी तरह नजर आता है.
But it isn't.
ये ऐसा नहीं है.
The father that was over here.
जो बाप वहां नजर आता है.
Stepped into the son over here.
वो बेटे के अंदर दाखिल हुआ.
And there was only one manifestation.
और सिर्फ एक ही जहूर था.
Amen.
बयान करने का.
Colossians 1:13 speaking of his dear son.
कुलशियों एक बाप उसकी 13वीं आयत में हमने देखा वो अपने बेटे के बारे में बात करता है.
Who is the image of the invisible God?
जो कि नादीदनी खुदा का सबूत है.
The firstborn of every creature.
जो कि हर बात में सबसे पहला पलौठों में पैदा होने वाला.
For by him were all things created.
और उसी के वसीले से सारी चीजें पैदा हुई.
And Ephesians 3:9.
और इफिसियों 3:9 में.
God.
खुदा.
Who created all things by Jesus Christ.
उसने तमाम चीजें खुदा यीशु मसीह के वसीले से तख्लीक की.
The Logos.
जो के लोगास कहलाता है.
Okay, now in our next session tomorrow.
कल इसी तरह की दूसरी मीटिंग में.
We have learned that the name of the Logos.
हमने we have learned.
Yeah.
हमने सीखा है कि लोगास का नाम क्या है.
Is Jesus.
खुदा यीशु मसीह है.
So we're going to follow now Jesus.
हम अब यीशु की पैरवी में आगे बढ़ना चाहेंगे.
Not of Nazareth yet.
जो अभी तक हम नासरत, जो यीशु नासरत का, उसकी बात नहीं कर रहे.
Jesus the Logos.
खुदा जो कलाम था, यीशु जो कलाम था, उसकी बात कर रहे.
We'll follow him through the Old Testament and into flesh.
हम उसको पुराने आदनामे में से देखकर जिस्म में आते हुए देखेंगे.
And see what we can learn.
और देखें कि हम क्या सीख सकते हैं.
Let's pray.
आमीन. आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा का शुक्र करें.
Go ahead and pray, brother.
खुदावंद, हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज फिर हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आया खुदावंद अपने मुकाशफे से, अपने बंदा के वसीला से हम पर कितनी अच्छी और अजीब बातों को बयान किया. हम ये जाने कि तेरे कलाम का नाम खुदावंद यीशु मसीह है और वही हमारा खुदा है. वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है. इसी माँ पर हमें कायम रहने का फजल दे ताकि खुदावंद हम नहीं बल्कि तू हमारी ज़िंदगियों से ओ ज़हूर पज़ीर हो और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए. मैं अपने आप को और हाज़र खादमों को खुदावंद तेरे सुपुर्द करता हूँ. अभी तक आया खुदावंद जो घाटे और कमियाँ हैं अपने खून से धोकर मिटाया खुदावंद, तेरे पाकरू की आग जला डाले खुदावंद, ताकि हम तुझको जाहिर करें और ये जाने कि हम तेरे फर्दन फर्दन अज़ा हैं खुदावंद. तू हमारा बदन है खुदावंद, हम तेरे लोग हैं और तेरे लोगों के अंदर ओ खुदावंद तेरी सिफात, तेरा काम, तेरी कुदरत जो है वो जाहिर पजीर हो है खुदावंद. हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारी इबादत के लिए. अब है खुदावंद अगली इबादत को, अगले ख़दम को, भाई तर्जमान को तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं खुदावंद अपने लोगों को वक्त पर ला, हमें तौफीक दे कि हम मिलकर है खुदावंद तेरी प्रस्तुति कर सकें और ये बातें और हमारी जिंदगियों के लिए तसल्ली इत्मीनान का सबब बने. यीशु के अब्दी नाम में आमीन.